श्रोताओं नमस्कार। यूरोपीय इतिहास के इस सफर में मैं रुद्र भानु प्रताप आपका स्वागत करता हूं। श्रोताओं, यूरोपीय इतिहास के तृतीय अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का शीर्षक है वियना कांग्रेस और यूरोपीय व्यवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं द कांग्रेस ऑफ वियना एंड कंसर्न ऑफ यूरोप। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने तृतीय अध्याय को। नेपोलियन की पराजय के बाद यूरोप में कई तरह के तनाव और अंतर्द्वंद्वों ने निर्णायक भूमिका अदा की। निरंतरता और परिवर्तन की शक्तियों में खींचातानी मची हुई थी। राजतंत्र, चर्च, सामंत और 2500 वर्षों की उथल पुथल के बाद शांति और स्थिरता की आकांक्षा यथास्थिति की पोषक शक्तियाँ थीं। बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास, नगरों का विकास और वृद्धि, राष्ट्रवाद और क्रांति के कारण जन्मे तथा विकसित प्रचारित और प्रसारित विचार परिवर्तन के वाहक तत्व थे। इन दो शक्तियों के संघर्ष से प्रारंभ पहली को तो सफलता मिली, फिर भी इन्हीं के द्वंद्व ने नेपोलियन के बाद के यूरोप का निर्णय किया। नेपोलियन को पराजित करने में जिन समित प्रयास को सफलता मिली थी, उसे आगे भी जारी रखना उचित और उपयोगी समझा गया। नेपोलियन यूरोप की पुनर्व्यवस्था और उस व्यवस्था की सुरक्षा के लिए मिलजुल कर एक संगठन बनाने की दिशा में कांग्रेस का जो क्रम वियना में शुरू हुआ वह वेरोना तक चला। इसी बीच हुए सम्मेलनों में प्रमुख रूप से ऑस्ट्रिया और रूस सक्रिय रहे। कभी कभी फ्रांस और प्रशा जैसे देश भी उसमें महत्वपूर्ण योगदान दिए। कांग्रेस का यह क्रम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की शुरुआत करने में अपनी सफलताओं के बावजूद ऐतिहासिक समझा जाता है। वियना कांग्रेस, श्रोताओं हमारा हेडिंग है वियना कांग्रेस। नेपोलियन कहा करता था कि फ्रांस की जनता स्वतंत्रता नहीं समानता की इच्छुक है। मेटरनिख कहता था कि यूरोप को स्वतंत्रता नहीं शांति चाहिए। मेटरनिख के युग में वियना कांग्रेस के माध्यम से ही नेपोलियन ने यूरोप में नेपोलियन युग से मेटरनिख युग में वियना कांग्रेस के माध्यम से ही प्रवेश किया था। यदि 19वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों पर नेपोलियन की अमिट छाप थी, तो उसके बाद 33 वर्षों पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिख की व्यक्तिगत छाया रही और उसकी नीतियों को प्रधानता मिलती रही। वियना कांग्रेस में नेपोलियन और क्रांति को दफन करके जहां तक संभव था पुरातन व्यवस्था के मूल्यों की पुनर्स्थापना करने का प्रयास किया गया। नेपोलियन के विरुद्ध इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा और रूस ने मार्च 1814 में सोमो की संधि की थी। इसके अनुसार नेपोलियन की पराजय के बाद 20 वर्षों तक क्षेत्रीय और राजनीतिक निर्णयों को लागू करने के लिए सहयोग करना था। नेपोलियन की पराजय के बाद मई 1814 में फ्रांस के साथ एक अत्यंत उदारपूर्वक संधि की गई, जिसके द्वारा उसे 1792 की सीमा प्रदान की गई थी। तभी नेपोलियन की एल्बा से वापसी ने स्थिति को एकदम बदल दिया। उसकी वाटरलू में अंतिम पराजय के बाद नवंबर 1815 में हुई दूसरी संधि अधिक कठोर थी। फ्रांस मुश्किल से अलसास और लारेन बचा पाया था और फ्रांस की भूमि पर विजेताओं की सेना तब तक के लिए छोड़ दी गई जब तक फ्रांस युद्ध का हर्जाना न चुका देता। नेपोलियन का प्रथम पदत्याग के बाद ही यूरोप के भविष्य की रूपरेखा मिला जुला कर बनाने की योजना शुरू हुई। पेरिस की प्रथम संधि के द्वारा विजेताओं ने बुर्बो वंश की फ्रांस में पुनर्स्थापना तो कर दिया था, लेकिन अन्य प्रश्नों पर विचार होना बाकी था। इसलिए मेटरनिख के बढ़ते प्रभावों के कारण ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, एक ऐतिहासिक सम्मेलन था। दुनिया के इतिहास में पहली बार इतने राजप्रमुख और राजनेता एक साथ इकट्ठे हुए थे। नेपोलियन की उपस्थिति में तो इन देशों में एकता बनी रही, लेकिन मुख्य विरोधी का पतन होते ही विजेताओं में अंतर विरोध भी बढ़ने लगा। लेकिन तभी नेपोलियन एल्बा से लौट आया और पेरिस की संधि पर पानी फिर गया। शांति की बात करने आए लोग जल्दी जल्दी युद्ध की तैयारियों में भाग लेने लगे। वाटरलू की पराजय के बाद नेपोलियन को अंतिम रूप से ठिकाने लगाकर वियना कांग्रेस का कार्य फिर से शुरू हुआ। इस समय वियना दुल्हन की तरह सजी थी। रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के राजा, इंग्लैंड के ड्यूक ऑफ वेलिंगटन और विदेश मंत्री कास्लरिया तथा फ्रांस के चालाक कूटनीतिज्ञ तालिरा वहां उपस्थित थे। इनकी चकाचौंध में यूरोप के अन्य राज्यों के प्रतिनिधि का स्थान गौण था। ऐसा लगता था कि सामंती और पुरातन यूरोप अपनी सारी शक्ति जुटाकर क्रांति के बाद यूरोप को अभिभूत और पराजित कर देना चाहता था। नाच तमाशो और गहमागहमी का सूत्रधार मेटरनिख था। वियना के मध्ययुगीन आडंबरों से सज्जित कक्षों में हजारों लोगों के बीच मेटरनिख इस तरह सहजता से कार्य करता था जैसे कोई मछली पानी में हो। वियना में तत्कालीन सभी प्रभावशाली व्यक्तियों का जमघट था। मेटरनिख वियना में उपस्थित लोगों में सर्वाधिक महत्व मेटरनिख का था। उसका प्रतिक्रियावादी प्रभाव नेपोलियन के पतन के बाद यूरोप पर इतना हावी था कि उसके अपने पतन तक के 33 वर्षों को मेटरनिख काल कहा गया। निश्चय ही वियना कांग्रेस के दौरान उसकी भूमिका सबसे अधिक प्रभावशाली थी। मेटरनिख के परिवार में ने पवित्र रोमन साम्राज्य की कूटनीतिक सेवा में अपना स्थान बना लिया। स्ट्रासबुर्ग में एक छात्र की हैसियत से उसने फ्रांस की क्रांति का प्रभाव देखा था और तभी से उसका विरोधी हो गया था। जब नेपोलियन ने उसकी पारिवारिक संपत्ति हड़प ली तो वह नेपोलियन का भी विरोधी हो गया। प्रसिद्ध कूटनीतिज्ञ और ऑस्ट्रेलियन चांसलर कोनित्स के संपर्क में आने से और उसके परिवार में भी विवाह करने के बाद मेटरनिख की प्रगति तेजी से हुई और अंतोगत्वा उसे स्वयं चांसलर पद मिला। वह ऑस्ट्रिया के लिए जितना खतरनाक नेपोलियन को समझता था उतना ही अलेक्जेंडर को भी। इसलिए उसने दोनों को आपस में टकरा देने की नीति अपनाई और स्वयं ऑस्ट्रिया को भावी युद्ध के लिए तैयार करता रहा। जब राष्ट्रों का युद्ध शुरू हुआ तो ऑस्ट्रिया की सेना ने निर्णायक भूमिका अदा की और मेटरनिख का सम्मान तेजी से बढ़ने लगा। यूरोप क्रांति के समर्थकों और विरोधियों में बटा हुआ था। मेटरनिख ने क्रांति विरोधी प्रतिक्रियावादियों का नेतृत्व किया और ऑस्ट्रिया तथा यथासंभव यूरोप में यथास्थिति बनाए रखने का प्रयास किया। सम्राट उस पर पूरा विश्वास करता था, इसलिए मेटरनिख अपने ही विचारों को क्रियान्वयन कर सकता था। उसे जर्मनी में बढ़ती हुई राष्ट्रवादिता से ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा खतरा दिखाई दे रहा था। उसने हर कीमत पर उसका दमन करने का निश्चय किया। वियना में उसका सारा प्रयास ऑस्ट्रिया का सम्मान और शक्ति बनाए रखने में लगा और उसे इस कार्य में सफलता भी मिली। अलेक्जेंडर वियना कांग्रेस में जार अलेक्जेंडर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण थी। कास्लरिया ने वियना से अपने प्रधानमंत्री को लिखा था कि सबसे बड़ा खतरा तो जार से ही है, जिसे पेरिस से बहुत लगाव है। अपने देश के निरंकुश शासन के विपरीत यहाँ उदारता और सहिष्णुता की नीति बरतकर वह अपने को तुष्ट और दूसरों को प्रभावित करना चाहता है। वास्तविकता यह थी कि अलेक्जेंडर विरोधाभास का पुतला था। वह पूरी तरह निरंकुश और क्रांति का विरोधी शासक था, लेकिन रूस की सीमाओं के बाहर उदारता का मुखौटा लगाने से उसे लाभ प्रतीत हुआ। वह रूस अधिकृत पोलैंड और रूस की पश्चिमी सीमाओं में कोई परिवर्तन नहीं चाहता था। इन सीमाओं के बाहर उसे संधि की शर्तें नरम करने की कोशिश की। वियना में संधि से भी अधिक एक अन्य कार्य में वह व्यस्त था। ईसाई सिद्धांतों को आधार बनाकर वह यूरोपीय राज्यों का एक पवित्र संगठन बनाना चाहता था। इस कार्य में उसे सफलता भी मिली। पवित्र संगठन उसकी कल्पनाशीलता, रहस्यवादिता, पाखंड और और चालाकी का प्रमाण था। कुछ भी हो, वियना में उसका प्रभाव था और शायद उसका व्यक्तित्व सबसे रंगीला और आकर्षक था। उसके जीवन को रहस्यमय ढंग से प्रभावित करने वाले लोगों में मादाम क्रूडेनर का स्थान प्रमुख था, जो उसे उसी तरह बस में रखती थी जैसे 100 साल बाद निकोलाल से रास्पुतिन क्रूडेनर और आरकाजेव उसकी कुंठाओं का इस्तेमाल करते थे। गैलिटजिन और कौसलेव ने जब उसे धर्मांधता से रोकना चाहा तो उन्हें सफलता नहीं मिली। वह कहा करता था, ईश्वर ने मुझको 800,000 की फौज इसलिए नहीं दी कि मैं अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति करूं, जबकि वास्तविकता इसके विपरीत थी। गेट जी ने कहा है कि वियना तो केवल प्रशंसा प्राप्त करने गया था। गेट जी ने कहा है कि वह वियना तो केवल प्रशंसा प्राप्त करने गया था। तालिरान, हमारा अगला हेडिंग है तालिरान, जो कि वियना कांग्रेस में सम्मिलित हुआ महत्वपूर्ण व्यक्ति था। इसके अलावा निर्णायक भूमिका अदा करने वालों में तालिरान प्रमुख था। तालिरान का इतिहास और चरित्र अनोखा था। उसने अपना जीवन एक पादरी के रूप में शुरू किया। क्रांतिकाल में वह चर्च का पद छोड़कर क्रांतिकारी हो गया। नेपोलियन का उदय होने पर वह क्रांति विरोधी हो गया और नेपोलियन का विदेश मंत्री बन गया। बाद में वह नेपोलियन का भी विरोधी बन गया और वियना में बुर्बो वंश एवं फ्रांस का प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित था। तालिरान किसी भी तरह मेटरनिक से कम योग्य और कूटनीतिज्ञ नहीं था, लेकिन वह अपने देश के हितों के प्रति अधिक जागरूक था और किसी बृहत्तर क्षेत्र में कार्यशील होने की स्थिति में नहीं था। उसने अत्यंत कुशलता के साथ वैधता का सिद्धांत स्वीकृत किया, इसलिए उसे सम्मान भी मिला और योग्यता जो उसकी योग्यता का प्रमाण था। इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया कास्लरिया और ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने। नेपोलियन को पराजित करने का श्रेय ड्यूक ऑफ वेलिंगटन के साथ जुड़ा हुआ था और नेपोलियन के पतन के बाद उसे ही सर्वश्रेष्ठ सेनापति समझा जाने लगा, लेकिन कूटनीति की जिम्मेदारियां कास्लरिया पर थी। कास्लरिया योग्य होने के बावजूद अंतर्मुखी व्यक्ति था। वह अपनी ही समस्याओं में उलझा रहने वाला व्यक्ति था। अपनी संकालु प्रवृत्ति के कारण वह अपना रसोईया तक साथ लाता था और कम बातचीत पसंद करता था। उससे अन्य प्रतिनिधियों का आक्रामक रवैया पसंद नहीं था। वह दूसरों को मेटरनिख की तरह धोखा नहीं देता था, लेकिन उसे धोखा देना मुश्किल था। उसे विश्वास था कि यूरोप के देश जितने गरीब होंगे, शांति की भावना उतनी ही अधिक बनी रहेगी। उसे इंग्लैंड के औपनिवेशिक हितों की विशेष चिंता थी और उसकी सुरक्षा में वह सफल भी हुआ। ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांसिस, प्रसा का शासक फ्रेडरिक विलियम और उसके साथ हेडेनबर्ग तथा हुम्बोल्टट प्रसा का नेपोलियन विरोधी सुधाकर स्टाइन और अनेक राजा, राजकुमार तथा कूटनीतिज्ञ भी वियना में उपस्थित थे। हमारा अगला हेडिंग है कांग्रेस का लक्ष्य। वियना में एकत्र हुए लोगों में वियना और देशगत मतभेद थे, लेकिन सभी इस बात पर एकमत थे कि 1789 से 1815 तक की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। क्रांति और नेपोलियन दोनों से सभी आतंकित थे, इसलिए वे ऐसी व्यवस्था चाहते थे कि फ्रांस की शक्ति न इतनी कमजोर हो जाए कि क्रांतिकारी स्थितियों को बढ़ावा मिले और न इतनी बढ़ जाए कि यूरोप को नेपोलियन जैसा विजेता से निपटना पड़े। नेपोलियन ने यूरोप का प्रारंभिक नक्शा ही मिटा दिया था, विशेष रूप से यूरोप के मध्य भाग का पूरा राजनीतिक ढांचा ही बदल गया था। पवित्र रोमन साम्राज्य भंग हो गया था। जर्मनी के सैकड़ों छोटे बड़े राज्यों में आपसी संबंध बदल गए थे। राइन का महासंघ भी मिट चुका था। वेस्टफोलिया और वर्सा के नए राज्य बनकर बिगड़ चुके थे। ऑस्ट्रिया के दक्षिण में पहले गणतंत्र फिर फ्रांस के अधीन तंत्रों का विकास होकर भी समाप्त हो चुका था। इटली के छोटे बड़े राज्य, इटली और नेपल्स के राज्यों से संगठित होने के बाद भी बिखर गए थे। इस तरह यह निश्चित करना था कि मध्य यूरोप का राजनीतिक स्वरूप क्या हो और नेपोलियन के विरुद्ध लड़े गए विभिन्न देशों की भूमिका का मूल्यांकन करने के बाद उनकी स्थिति क्या हो। इस कार्य के लिए कुछ सिद्धांत जरूरी थे। इस समय तालिना ने असाधारण कूटनीति का परिचय दिया और पराजित फ्रांस का सम्मान बचाने में सफल हो गया। इसके लिए उसे वैधता की वकालत की और विजेताओं ने उसे स्वीकार किया। कुल मिलाकर निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित हुए। वैधता, पहला सिद्धांत है वैधता। यह स्वीकार किया गया कि 1789 के बाद जिन वैध शासनों का उन्मूलन हो गया था उन्हें पुनर्स्थापित किया जाए। इन्हें न्यायसंगत सिद्धांत की तरह पेश किया गया, लेकिन वास्तव में इसने इतिहास का क्रम की विरोधी धारा का प्रतिपादन किया और इतिहास की उपलब्धियों को नकारने की कोशिश की। साथ ही इस सिद्धांत को वह नहीं माना जहां यह विजेताओं के हित में नहीं था। शक्ति का संतुलन। यह बात सर्वमान्य थी कि यूरोप में किसी एक देश की शक्ति बढ़ते ही दूसरे के लिए खतरा पैदा हो जाता। इसलिए विशेषकर फ्रांस के चारों ओर छोटे देश जैसे हॉलैंड और बेल्जियम को मिलाकर एक कर दिया जाए ताकि फ्रांस पर अंकुश बना रहे। यह सिद्धांत केवल यूरोप और विशेषकर फ्रांस को दृष्टि में रखकर बनाया गया, क्योंकि इंग्लैंड विश्व के संदर्भ में यह सिद्धांत कभी स्वीकार्य नहीं करता। मुआवजा और पुरस्कार तीसरा सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार जिस देश को नेपोलियन ने नष्ट किया था उन्होंने उसके विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया था और नुकसान पूरा करना और उन्हें पुरस्कृत करना स्वीकार किया। तीसरा, सजा। जिन देशों ने नेपोलियन का साथ दिया था उन्हें सजा मिलनी चाहिए। यह मानकर सैक्सनी जैसे देशों के शासकों को पदच्युत कर दिया गया। यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन सिद्धांतों का पालन करने में किसी नैतिक मापदंड का सहारा नहीं लिया गया और जहां आवश्यक हुआ उनकी अवहेलना भी की गई। वास्तव में निर्णायक समिति स्वयं निर्मित 8 व्यक्तियों की समिति थी जिनमें इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रशा के प्रतिनिधि थे। शुरू में ही ऐसा लगता था कि मेटरनिख और अन्य विजेताओं के प्रतिनिधि मिलकर सारे निर्णय ले लेंगे, लेकिन तालिना ने यह नहीं होने दिया। उसने स्पष्ट कर दिया कि यदि निर्णयों में फ्रांस का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो वह खुली कांग्रेस की वकालत करेगा और निर्णय सबकी राय से करना अनिवार्य हो जाएगा। विजेताओं में आपसी मतभेद थे। ऑस्ट्रिया रूस और प्रशा से आतंकित था। तालिना ने इस आतंक को बढ़ावा दिया और ऐसी स्थिति आ गई कि फ्रांस, इंग्लैंड और ऑस्ट्रिया रूस और प्रशा के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई के लिए भी तत्पर हो गए। ऐसी नौबत नहीं आई, लेकिन इसका लाभ उठाकर तालिना ने अपनी बात मनवा ली और अंत में निर्णय 4 नहीं 5 देशों ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड, प्रशा, रूस तथा फ्रांस के प्रतिनिधियों ने मिलकर किया। अन्य प्रतिनिधियों स्पेन, पुर्तगाल और स्वीडन से औपचारिक स्वीकृति प्राप्त कर ली गई। जून में तैयार संधि में वाटरलू के बाद हुई पेरिस संधि की शर्तों को शामिल किया गया और 121 धाराओं के समझौते को अंतिम रूप 9 जून 1815 को औपचारिक मान्यता मिल गई। हमारा अगला हेडिंग है वियना कांग्रेस के निर्णय। उपयुक्त लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निम्नलिखित निर्णय लिए गए। 1. फ्रांस पर बूर्बू वर्ष का अधिकार स्वीकार किया गया। लुई 16वां और उसके पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी, इसलिए उसके भाई लुई 18वें को फ्रांस का शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। 2. फ्रांस के उत्तर में हॉलैंड को बेल्जियम का प्रदेश जीतकर उसकी शक्ति बढ़ा दी गई। ऑरेंज परिवार की सर्वोच्चता स्वीकार कर ली गई। 3. स्वीडन के शासक वर्नदात ने नेपोलियन के विरुद्ध मदद की थी, उसे नार्वे दे दिया गया। 4. फ्रांस के दक्षिण पूर्व में सार्डिनिया के राजा को पिडमांड, नीस और सवाया लौटा दिया गया। जेनोवा का गणतंत्र भी उसे दिया गया। 5. पोप को चर्च का राज्य वापस दिया गया। 6. पवित्र रोमन साम्राज्य को पुनर्जीवित करना कठिन था, इसलिए जर्मन राज्यों का एक संघ बनाया गया जिसमें ऑस्ट्रिया के नेतृत्व का प्रावधान किया गया। मेटरनिख ने जर्मन राज्यों को की परस्पर निकटता की संभावना का विरोध किया। 7. ऑस्ट्रिया को लोम्बार्डी और वेनिसिया के प्रांत वापस कर दिए गए। इलीरिया उसे पहले ही मिल चुका था। 9. नेपोलियन की पत्नी मारी लुइजा को पार्मा की रियासत दी गई। 10. प्रसा को रेमिस का प्रांत वापस मिल गया, साथ ही उसे कोलोन, त्रेव और स्वीडन का पामेरिनिया क्षेत्र भी दे दिया गया। सैक्सनी का एक भाग प्रसा को दे दिया गया। इस प्रकार सैक्सनी को सजा मिल गई और प्रसा को पुरस्कार। प्रसा के हिस्से का पोलैंड रूस के हिस्से के ही कब्जे में छोड़ दिया गया। 11. रूस को फिनलैंड और अपने हिस्से का पोलैंड वापस मिल गया। 12. पहले स्विट्जरलैंड पर फ्रांस का आधिपत्य हो गया था, अब उसे स्वतंत्र गणतंत्र मान लिया गया और उसे तीनों और कैंटन जोड़ दिया गया। 13. स्पेन में बुर्बो वंश की स्थापना हो गई। 14. नेपल्स में भी पुराना राजतंत्र वापस आ गया। 15. इंग्लैंड में अपनी औपनिवेशिक विजय बरकरार रखी। हेलिगोलैंड, मॉरिशस, माल्टा, ट्रिनिडाड, टोबैगो तथा श्रीलंका और अफ्रीका के दक्षिण स्थित उत्मासा अंतरीप पर इंग्लैंड का प्रभुत्व स्वीकार किया गया। बदले में इंग्लैंड ने हॉलैंड को 60 लाख पाउंड मुआवजे के रूप में अदा किए। 16. हैनोवर को एक स्वतंत्र राज्य मान लिया गया। 17. नेपोलियन के सौ दिन के राज्य ने फ्रांस की स्थिति को कमजोर कर दिया था, इसलिए पेरिस की दूसरी संधि में उसकी 1791 की सीमा स्वीकार कर ली गई। उसे 70 करोड़ फ्रांक खजाना देना पड़ा और 5 वर्ष के लिए फ्रांस में विजेताओं की सेना के रहने का प्रावधान हुआ। इन प्रावधानों के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए जिसका राजनीतिक ही नहीं सामाजिक और आर्थिक महत्व भी था। ये ऐतिहासिक सिद्ध हुए। ये निम्न है। 1. इंग्लैंड ने पहले ही गुलामी प्रथा का अंत कर दिया था। वियना में हॉलैंड, फ्रांस और स्पेन ने भी इसका उन्मूलन स्वीकार किया। भूमध्य सागर में बारबेरी कोरसैर्स नामक समुद्री लुटेरों ने आतंक मचा रखा था, जिसके कारण यातायात और व्यापार को बहुत नुकसान होता था। उनके विरुद्ध अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। ब्रिटिश नौसेना ने संगठित रूप से उन पर प्रहार किया और उनका अंत न केवल भूमध्य सागर का मार्ग सुरक्षित किया, बल्कि उनकी कैद से हजारों ईसाई बंदियों को भी छुड़ाया गया। अगला है, यूरोप में अंतर्राष्ट्रीय नदियों में जहाजरानी के नियम बनाए गए। अगला है, पहली बार राज्य के परस्पर संबंधों पर विचार हुआ और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के क्रियान्वयन का सूत्रपात हुआ। स्वतः हमारा अगला हेडिंग है वियना कांग्रेस के कार्यों का मूल्यांकन। कांग्रेस का न तो कभी उद्घाटन हुआ था और न ही बकायदा समस्याओं पर विचार ही हुआ था। वास्तव में वहां इकट्ठा विजेताओं के प्रतिनिधियों ने किसी स्टॉक एक्सचेंज के दलालों की तरह सौदेबाजी की थी। 22 वर्षों तक यूरोप के हर शासकों ने फ्रांस से घृणा की थी, फिर भी वियना में फ्रांस के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाया गया। इसका श्रेय लातीरा की कूटनीतिक और अलेक्जेंडर के फ्रांस के प्रति लगाव को है। वियना कांग्रेस के बाद यूरोप में 40 वर्षों तक कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ। इसके बाद युद्ध हुआ भी तो सुदूर क्रीमिया में। इससे भी कई वर्षों बाद बिस्मार्क ने युद्धों की राजनीति शुरू की। युद्धों के बीच इतना बड़ा अंतराल यूरोप के इतिहास में शायद ही कभी आया हो। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरू हुए 30 वर्षीय युद्धों से नेपोलियन के युद्धों तक 200 वर्षों का इतिहास निरंतर युद्धों का इतिहास निरंतर युद्धों का इतिहास था। इसके बाद शांति का और भी महत्व बढ़ गया था, इसलिए वियना कांग्रेस को इसका श्रेय मिला और युद्ध और शांति के बीच सीमा रेखा सी प्रतीत हुई। लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। वियना कांग्रेस प्रतिक्रियावादियों शक्तियों की विजय थी। वहां एकत्र लोगों का दृढ़ निश्चय था कि क्रांति और राष्ट्रीयतावादी शक्तियों को सिर नहीं उठना देना चाहिए। लातिरा ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से द्वैधता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसके माध्यम से पुरातन व्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहा। लेकिन वहां ही राजवंशों के हित में राष्ट्रीयता के सिद्धांत की अवहेलना की गई। नॉर्वे स्वीडन के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं था और बाद में वहां स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई। इस तरह बेल्जियम में ही हॉलैंड के विलय का विरोध बना रहा और उसने अपनी स्वतंत्रता हासिल कर ली। जर्मन लोग निकट आकर अपने राष्ट्रीय राज्य की कल्पना करने लगे, लेकिन उनकी इच्छाओं के विरुद्ध ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप बना रहा। इसका भी विरोध होता रहा और अंत में एक जर्मन राज्य का निर्माण हो ही गया। इस तरह वैधता का आधार मानने के बावजूद क्रांति के पहले के गणराज्यों को फिर से स्थापित नहीं किया गया और उनका बड़े राज्यों में विलय स्वीकार कर लिया गया। इस तरह स्पष्ट है कि वैधता का सिद्धांत ही धूर्ततापूर्ण और केवल कुछ परिवारों के पक्ष में था। जनता की इच्छाओं उनके संघर्षों और उपलब्धियों की या तो अवहेलना की गई या एकदम से नकार दिया गया। यह सिद्धांत भी पूरी तरह हर जगह लागू नहीं किया गया और उनकी व्याख्या मनमाने ढंग से की गई। पुरस्कार, मुआवजे, सजा की नीति भी गलत थी। कहीं इसके लिए देश चुने गए तो कहीं राजा। जैसे फ्रांस में केवल नेपोलियन और उसके परिवार को दोषी ठहराकर फ्रांस और उसके पुराने राजवंश को हर प्रकार सम्मानित किया गया, इसी मापदंड के आधार पर सैक्सनी के राजा को हटाकर उसके राज्य की अखंडता को स्वीकार किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। पोलैंड का भी क्रांतिकाल में दो बार विभाजन हुआ, लेकिन वहाँ राष्ट्रीय अखंडता को कौन कहे, पुराने राजवंश की दुहाई भी नहीं सुनी गई। पुरस्कार और सजा का कोई ऐसा मापदंड नहीं रखे जाने से कांग्रेस के मंत्री गिंत ने कहा कि वास्तव में कांग्रेस का लक्ष्य विजित प्रदेशों के लूट के माल का बंटवारा करना मात्र था। शक्ति संतुलन का सिद्धांत भी कारगर नहीं हो सकता था और न ही फ्रांस के अलावा किसी अन्य देश पर लागू हो पाया। वास्तविकता यह थी कि यूरोप में सबसे शक्तिशाली देश इंग्लैंड था और क्रांतिकालीन तथा नेपोलियन के युद्धों में उसकी शक्ति न केवल अक्षुण रही बल्कि उसका विस्तार भी हुआ। लेकिन किसी भी सिद्धांत के नाते वहां अंकुश लगाना संभव नहीं था। बड़े देशों ने जब आवश्यक समझा तो शक्ति संतुलन के सिद्धांत की अवहेलना कर दी। प्रसा ने विस्तार किया, रूस ने प्रभाव बढ़ाया, फ्रांस ने भी उपनिवेश बढ़ाए। वियना कांग्रेस का स्वर 18वीं सदी का था, इसलिए इतिहास के विकास क्रम में उसने अवरुद्ध ही करने का प्रयास किया। वैसे ऐसा लगता है कि वियना कांग्रेस को सफलता ही मिली, लेकिन दो बातें यहाँ रेखांकित की जानी चाहिए। एक तो पराजित फ्रांस के प्रति अपनाई गई उदार नीति, दूसरे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए किए गए प्रयास। वियना व्यवस्था की इसलिए आलोचना की जाती है कि उसके बाद के सौ साल निरंतर इस व्यवस्था को समाप्त करने में बीते। वहां उपस्थित राजनेताओं में परस्पर विद्वेष और टकराव भी था। आलोचना हो सकती थी, राजनेताओं की सीमाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए था और उन्हें पैगंबर नहीं समझना चाहिए। किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते और संधि की तरह विवेचना की संधि भी मोल तोल और आपसी समझौते का परिणाम थी। सामान्यतया पुराने राजतंत्रों की वापसी का लक्ष्य इसने पूरा किया और शक्ति के संतुलन के लिए पूर्वी यूरोप में अलेक्जेंडर की विस्तारवादी महत्वाकांक्षा को ब्रिटेन में नियंत्रित किया गया। जर्मन क्षेत्रों की पुनर्व्यवस्था में ऑस्ट्रिया और प्रसा को शामिल रखकर संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया गया। डेविड टॉमसन के अनुसार इस संधि पर राजनीतिक सूझबूझ और तर्क संगतता की छाप थी। इसका मुख्य दोष यही था कि इसने राष्ट्रवाद की शक्ति और गति का उचित मूल्यांकन नहीं किया। टॉमसन संधिकर्ताओं की सीमाओं को रेखांकित करते हुए इस उपेक्षा को अनुचित बताता है कि उन्होंने राष्ट्रवाद और उदारवाद की शक्ति को नहीं पहचाना। उसके अनुसार तत्कालीन यूरोप को सबसे अधिक शांति की आवश्यकता थी और वियना की संधि ने यूरोप के करीब आधी शताब्दी की शक्ति प्रदान की। यह एक उदार मूल्यांकन है। यह सच है कि संधिकर्ता अपने हित की बात करते और उन्होंने वही किया भी। उन्हें अपने लक्ष्य में तत्कालीन सफलता भी मिली, लेकिन प्रतिक्रियावादी चरित्र और निर्णयों को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता है। यह निर्विवाद है कि वियना कांग्रेस का एक ही लक्ष्य है और एक ही सिद्धांत था, पिछले 25 वर्षों की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना और यथास्थिति बनाए रखना। वियना के बाद अधिवेशन बुलाने का जो सिलसिला चला और वहाँ जो निर्णय किए गए, वो यही प्रमाणित करते हैं कि यूरोप की प्रतिक्रियावादी शक्तियाँ पूरी तरह संगठित होकर प्रगति का मार्ग अवरुद्ध करने पर उतारू थीं।